ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चितवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज हुआ संपन्न। समावेशी और न्याय संगत विकास के दृष्टिकोण से आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विकास बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ गुणाकर भट्ट का कथन। काठमांडू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पशु सेवा विभाग द्वारा तकनीकी टीमों को किया गया तैनात। और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों के बीच आपातकाल घोषित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का चितवन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज संपन्न हुआ है। महाधिवेशन के तहत आज दूसरे चरण में महिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, दो खुले सह महामंत्री और एक महिला सह महामंत्री पद के लिए मतदान हुआ। मतदान के परिणाम में सुविधा गौतम महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। इसी प्रकार बिपिन आचार्य महामंत्री, असीम शाह और हरि ढकाल खुले वर्ग से सह महामंत्री तथा निशा डांगी महिला सह महामंत्री निर्वाचित हुई। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष पद पर रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता पद पर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और खुले वर्ग के उपाध्यक्ष पद पर डॉ स्वर्णिम वागले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इससे पहले कल केंद्रीय सदस्य पद के लिए मतदान कराया गया था। रासोपा के विधान अनुसार पहले चरण में केंद्रीय सदस्यों का चुनाव और दूसरे चरण में पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाता है। दोनों चरणों में सभी महाधिवेशन प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही संपन्न हुआ। रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन आषाढ़ 7 गते रविवार से चितवन में आयोजित किया गया था। आज दोपहर 1 बजे निर्धारित प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है। संघीय संसद के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा आज जारी एक सूचना में बताया गया कि विशेष कारणों से आज की प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित की गई है। संघीय संसद सचिवालय ने आज ही दूसरी सूचना जारी करते हुए प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक परसों रविवार सुबह 11 बजे के लिए निर्धारित की है। इससे पहले आज ही महासचिव पांडे ने एक सूचना जारी कर बैठक को कल शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की जानकारी दी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में जारी रहने तथा पार्टी के सांसदों और मंत्रियों के महाधिवेशन में व्यस्त होने के कारण बैठक स्थगित की गई है। इससे पहले भी आषाढ़ 11 गति के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित कर आज के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान वैकल्पिक आवास, सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था किए बिना भूमिहीन एवं सुकुम्बासी परिवारों को होल्डिंग सेंटरों से हटाना मानव अधिकारों के विरुद्ध है। सांसदों ने भूमिहीन नागरिकों, सुकुम्बासी और नदी किनारे रहने वाले अव्यवस्थित बस्तियों के लोगों के उचित पुनर्वास की मांग की। साथ ही दृष्टिबाधित नागरिकों की आजीविका से जुड़े सड़कों पर संगीत प्रस्तुति देने के पेशे पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर उसे तत्काल बहाल करने की आवश्यकता बताई। सांसदों ने कहा कि मध्येश में भूजल के अत्यधिक दोहन से जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके कारण बोरिंग से पानी निकालना बंद हो रहा है। उन्होंने मध्येश में पेयजल और सिंचाई की पहुंच बढ़ाने तथा गन्ना और चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की भी मांग की। बैठक के शून्यकाल में सांसदों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के विरोध को सरकार द्वारा गंभीरता से लेने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर 3% कर लगाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने तथा ईंधन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव कुल बहादुर कडेल ने विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी सोमवार आषाढ़ 15 गते दोपहर 12 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G। भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G।
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G। आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति में आज विभिन्न स्तर की व्यवस्थापिकाओं तथा वित्तीय अंतर संबंधों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सिंहदरबार में आयोजित समिति की बैठक में सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की अर्थ विकास तथा प्राकृतिक संसाधन समिति, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन तथा वित्त आयोग और राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ गुणाकर भट्ट ने बताया कि समावेशी और न्यायसंगत विकास की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर विकास बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्येश, सुदूर पश्चिम और कर्नाली प्रदेशों में अभी भी आर्थिक विकास दर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए संघ प्रदेश और स्थानीय सरकारों को मिलकर इन क्षेत्रों के लिए विकास बजट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरोला ने कहा कि स्थानीय निकायों के मानव विकास सूचकांक समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्व वितरण में कठिनाइयां आ रही है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभापति घनश्याम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार संघीय और स्थानीय सरकारों के समन्वय के बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि कई मामलों में तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बैठक में सांसदों ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का नेतृत्व कर रही लगभग 2/3 बहुमत वाली पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा अपने महाधिवेशन में प्रदेश सभा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करना आपत्तिजनक है। उन्होंने पार्टी से इस निर्णय पर पुनः विचार कर उसे वापस लेने की मांग की। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के टीकापुर आंगिक परिसर की अतिक्रमित भूमि को उपयोग में लाने की दिशा में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कंचनपुर के महेंद्र नगर में आयोजित सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि टीकापुर परिसर की अतिक्रमण की चपेट में आई 300 बीघा भूमि को पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दीक्षांत होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता और भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न नए विषय और संकाय जोड़े जाएंगे। समारोह में कुल 2,489 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों की समस्या को एक सामाजिक चुनौती के रूप में देखते हुए इसके उन्मूलन की शुरुआत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की नीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आज जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार सभी संबंधित संयंत्रों और संरचनाओं को सक्रिय रूप से परिचालित करेगी। पशु सेवा विभाग ने बताया है कि काठमांडू घाटी तथा आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तकनीकी टीमों को तैनात कर नियंत्रण अभियान तेज कर दिया गया है। विभाग ने काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर और कावरे जिलों में संक्रमण का खतरा अधिक होने के कारण रोग नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित नमूनों की जांच और निगरानी बढ़ा दी है। विभाग के महानिदेशक डॉ उमेश दाहाल के अनुसार लगभग 3 महीने पहले शुरू हुआ संक्रमण अब 11 जिलों तक फैल चुका है। उन्होंने बताया कि यह संक्रमण मनुष्यों में भी फैल सकता है, इसलिए संक्रमण पर शीघ्र नियंत्रण पाने के लिए पोल्ट्री व्यवसायियों और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। विभाग के अनुसार बर्ड फ्लू का न तो प्रभावी उपचार उपलब्ध है और न ही कारगर टीका। चूंकि ये वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए संक्रमित मुर्गियों तथा अन्य पक्षियों को नष्ट करना ही सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में यूक्रेन के लगातार ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों के बाद रूस समर्थित प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। रूस द्वारा नियुक्त क्रीमिया प्रमुख ने शुक्रवार को ये घोषणा की। रूसी अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में यूक्रेनी हमलों से ऊर्जा अवसंरचना, ईंधन भंडारण केन्द्रों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चितवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज हुआ संपन्न। समावेशी और न्यायसंगत विकास के दृष्टिकोण से आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विकास बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ गुणाकर भट्ट का कथन। काठमांडू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पशु सेवा विभाग द्वारा तकनीकी टीमों को किया गया तैनात और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों के बीच आपातकाल घोषित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।